नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए रिकॉर्ड मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने बताया कि शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल में लगभग 92% मतदान हुआ। दक्षिण दिनाजपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ, जहां 93% से अधिक वोट डाले गए। इस चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हुआ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक करीब 85% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृष्णानगर और मथुरापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली के बालागढ़ जनसभा में कहा कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य में घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया। सरकार पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य और वाणिज्यिक LPG आपूर्ति लगभग 70% है।
हमारे घरेलू LPG सप्लाईज नॉर्मल है। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को LPG सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रतिरोज बुकिंग हो रही है। और जो हमारा DAC या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डायवर्जन को रोकने में काफी मदद मिल रही है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज पर गोलीबारी नहीं हुई। विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारत ने फ्रांस के हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट की घोषणा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस निर्णय से लोगों की सुगम आवाजाही तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के उद्योग जगत को भारत में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास और निर्माण में सहयोग करने का निमंत्रण दिया है। श्री सिंह ने आज कहा कि भारत ने पिछले दशक में व्यापार सुगमता और देश में निवेश के लिए आकर्षक स्थान बनाने के लिए कई रचनात्मक सुधार किए हैं। श्री सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित रक्षा निवेशक शिखर सम्मेलन में ये बात कही।
I have come here today.
मैं आज यहाँ न केवल भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर आया हूँ, बल्कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत रक्षा औद्योगिक साझेदारी के समर्पित समर्थक के तौर पर भी आया हूँ। मेरा जर्मन उद्योग के लिए स्पष्ट संदेश है, आइए भारत के साथ सहयोग करें और आगे बढ़ें। वैश्विक औद्योगिक और तकनीकी परिदृश्य में जर्मनी का बहुत ही विशेष स्थान है।
ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आज चंबा कोटी नेल सड़क पर हुई। दुर्घटना में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में आज भारतीय निशानेबाजों ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में नारायण प्रणव वनीता सुरेश ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। मुंबई में IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 208 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 6ठे ओवर में 3 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।